हरे कृष्ण। तो फिर से एक बार से भक्तों का हृदयपूर्वक स्वागत है कि रामायण सदियों से भारत के भूमि में गाए जा रहा है और राम कथा के बिना राम का जीवन चरित्र समझे बिना कृष्ण का जीवन चरित्र समझना बहुत कठिन है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि राम का जीवन का आचरण करना चाहिए जब जाके कृष्ण को समझना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन जब वो त्रेता युग में राम अवतार में आते हैं तो एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, कर्तव्य कैसा निभाना चाहिए, चाहे पुत्र धर्म हो, स्त्री धर्म हो, पिता का धर्म हो, बंधु का धर्म हो, प्रजा का धर्म हो, गुरु का धर्म हो, कैसे निभाना चाहिए, ये रामायण से भगवान सिखाना चाहते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में इस अयोध्या कांड में जो प्रसंग आता है 119 अध्याय टोटल अयोध्या कांड में है और 119 अध्याय में से कम 30-35 अध्याय जो भरत महाराज का समर्पण त्याग है उसके ऊपर है। तो 35 अध्याय में लगभग 500 से 600 श्लोका है और 500-600 श्लोका यहां पे कहना है तो कम से कम 3-4 घंटा कम से कम लगने वाला है, तो उससे भी ज्यादा। लेकिन संक्षिप्त रूप में जो इस प्रसंग को हम वर्णन करना चाहते हैं, क्योंकि भरत महाराज जी का समर्पण और त्याग ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भक्ति में दोनों की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है और त्याग की आवश्यकता है। और कहा गया है कि धर्म से श्रेष्ठ क्या है, तो धर्म से श्रेष्ठ है प्रेम और समर्पण और त्याग। धर्म अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि पुत्र धर्म कहा गया, बंधु धर्म कहा गया, पिता धर्म कहा गया है, लेकिन ये जो वास्तविक में प्रेम धर्म है, जो भगवान के साथ का प्रेम धर्म है, उसको धर्म की चौकट भी उसको रुका नहीं सकती। तो आगे चर्चा होगी। तो वाल्मीकि महर्षि का जो रामायण है वो भगवान की महत्ता को स्पष्ट करता है, राम के गुणगान की बखान करता है, और जो तुलसीदास जी की रामायण है उसमें भक्तों की वो प्रशंसा करता है, भक्तों के गुणगान गाते हैं। और भक्तों का और भगवान का जो प्रेम संबंध है, चाहे अयोध्यावासी हो, चाहे लक्ष्मण का प्रेम हो, चाहे भरत जी का प्रेम हो, या केवट का हो, निषाद राज का हो, या सभी स्त्री पुरुषों का प्रेम हो, ये प्रेम का वर्णन, भक्तों का जो भगवान के ऊपर प्रेम है, इसका वर्णन ये तुलसीदास जी का रामायण करते हैं। तुलसीदास जी और भक्तों का भाव लेके इस रामायण को प्रस्तुत किए हैं। और वाल्मीकि रामायण वैसे तो प्राचीन है, पुराना है और प्रसिद्ध है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास जी के रामायण में जो करुण रस है वो करुण रस नहीं है। यहाँ पे भगवान का जो मर्यादा पुरुषोत्तम का भाव है, उस भाव का वर्णन ज्यादा करके वाल्मीकि रामायण में आता है। तो इसलिए दोनों का रेफर करके हम ये कथा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रसंग की शुरुआत कहां से करना एक बड़ा प्रश्न था, क्योंकि इतने बड़े अध्याय है, इतने बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, तो मैंने सोचा कि ये जो सुमंत्र का रिटर्न जर्नी है, जब वो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी को छोड़ के उनके आशीर्वाद लेके रिटर्न आते हैं अयोध्या के लिए, तो सुमंत्रण मन में बहुत व्याकुल, बहुत दुखी और चिंताएं जताए थे कि मैं अयोध्या जाके क्या कहूं, किसको मुंह दिखाऊं, कि किस तरह आपने राम को वन में छोड़ दिया और अभी मुंह दिखाने के लिए आ गए। तो अयोध्यावासी तो आपको सबको पता है कि एक ही रात में भगवान रामचंद्र जब अयोध्यावासी सोए थे तो ये तामसा नदी के तट के बाद वो सुबह सुबह उठकर चले गए जल्दी, और अयोध्यावासी को पता ही नहीं चला कि भगवान राम के साथ हमें वन में जाना है, और वो सोच ले कि राम लक्ष्मण सीता कहां चले गए। तो वशिष्ठ जी ने बताया कि प्रभु आपको दुख होगा, इसलिए सुबह होने से पहले आंधी रात में चले गए। तो कुछ उपाय न था, अयोध्यावासी का इच्छा था कि वन में जाना है, भगवान का साथ में रहना है, उनका संग प्राप्त करना है, और फिर हम वापस आएंगे कुछ दिन रहेंगे वहां के। तो उनकी इच्छा अधूरी रह गई थी, तो उसी कारण फिर से एक बार आगे देखते हैं कि किस प्रकार अयोध्यावासी को वो प्रसंग का अनुभव करने को मिला कि उनकी इच्छा पूरी हुई। तो यहां पे सुमंत्रन जी अयोध्या में प्रवेश किए हैं, लेकिन अयोध्या में लगभग दोपहर में आए हैं, तो दिन भर वो अयोध्या के महल में प्रवेश नहीं किए, अयोध्या के बाहर ही एक झाड़ के नीचे बैठ के पूरा समय भगवान राम के चिंतन में गमाया, आत्मचिंतन करने लगे कि किस प्रकार मैंने भगवान राम को सीता को वन में छोड़ दिया, और मैं अयोध्या में भगवान राम के बिना ये राज सिंहासन को, ये दशरथ महाराज को, सभी रानियों को, अयोध्या वासियों को क्या मुंह जवाब दूंगा, और मेरा मुंह देखने के बाद सब अपशकुन हो जाएगा। तो मुझे अयोध्या में प्रवेश करना है तो संध्या समय जाना चाहिए, तो इसलिए जब संध्या हो गई, संध्या के समय में दशरथ महाराज अपने महल में थे, कौशल्या माता अपनी महल में थे, तो दशरथ महाराज के पास तो सीधा जा नहीं सकते, तो पहले महल में प्रवेश किया तो सामने उनको कई कई मिली, कई कई से बात किया, हाँ सब ठीक है, वन में चले गए ना। कई कई के मन में थोड़ी भी शंका नहीं थी, दुख नहीं था, ना विरह का अनुभव था, उसको मन में लग रहा था कि अच्छा दशरथ महाराज का इच्छा पूरा किया राम ने, बहुत अच्छा किया, अभी कल भरत जी का राजाभिषेक होगा, उसकी तैयारी करनी चाहिए। मन में अपने सपने सजा रही थी किस प्रकार भरत जी आएंगे और राजाभिषेक होगा, मैं रानी बनूंगी, भरत राजा बनेंगे। लेकिन सुमंत्रन के जो चेहरे पे एक व्याकुलता थी, एक विरहता, दुख था, उसको पहचान नहीं सकी। जब मन में स्वार्थ की भावना होती है तो दूसरों का दुख है, दूसरों की जो व्याकुलता है वो समझ में नहीं आती। जब प्रचारक प्रचार करते हैं और लोगों को कृष्ण भावना में आने के लिए मदद करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये हरे कृष्णा वाले ये कोई अच्छे लोग नहीं है, ये बार बार क्यों बोलते हैं भक्ति करो, तो हमें समझ में आता है। तो उनके मन में जो स्वार्थ की इच्छा होती है कि जगत का आनंद कैसे प्राप्त करे, तो भक्तों के शब्द जो है वो कानों से हृदय में प्रवेश नहीं करते। अंदर ईर्ष्या का भाव होता है, मत्सर का भाव होता है, स्वार्थ का भाव होता है, तो भगवान के साथ प्रेम करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब तक ये स्वार्थ की भावना को व्यक्ति छोड़ता नहीं, कपट मन में होता है, तभी तक उसके अंदर कोई परिवर्तन, शांति या सुख या आनंद की चेष्टा नहीं होती। तो थोड़े देर के पश्चात कौशल्या माता का आगमन हुआ। कौशल्या माता ने देखा कि ये सुमंत्रन आ गया है, और सुमंत्रन बड़ा दुखी है, कष्टी है, तो सुमंत्रन को देख के ही कौशल्या माता के हृदय में भगवान रामचंद्र का, सीता माता का विरह अनुभव होने लगा। वो खूब रोई, और उसके पश्चात दशरथ महाराज के मिलने के लिए अपने महल में लेके चली गई। जैसे ही सुमंत्रन महल में आ गया तो दशरथ महाराज को देखा तो उनका जो मुकुट एक तरफ पड़ा है, उनके आभूषण इधर उधर फैले हुए हैं, भरत महाराज बिस्तर पे नहीं लेकिन जमीन में लेटे हुए हैं और फूत फूत के रो रहे हैं कि मैं किस प्रकार का पिता हूं, कि मेरा राम कहां है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और सीता माता मेरी इतनी सुंदर बहू कि उसको मैंने वन में भेज दिया और मैं यहां पे महल में रह रहा हूं, तो मेरी मृत्यु क्यों नहीं आती? मेरे इस कोमल बालक को मैंने कितना कष्ट दिया है, कितना दुख दिया, कितना पीड़ा दिया है। इस तरह से दशरथ महाराज मन में सोच रहे थे। देखिए पिता का पुत्र के प्रति स्नेह, हम देखते हैं कि दशरथ महाराज के मन में कोई कपट नहीं था कि भगवान रामचंद्र को वन में भेज दिया जाए और भरत को राजगद्दी देके मैं राजकर्म संभाल सकता हूं। लेकिन उनके मन में विरह था कि कल राजाभिषेक होने वाला है, राम राजा बनने वाले हैं, लेकिन जो कैकेयी कुटिल स्त्री है, जो मैंने वर दिया था उसको पूरा करने के लिए मुझे राम को वन में भेजना पड़ा। तो इसका मन में बहुत मैं इसका कारण हूं, जो भी पाप है सब मेरे माथे पे आए, सब कष्ट मुझे हो, मैं नरक में जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे जिंदा क्यों रखा है विधाता ने, इस प्रकार सोच रहे थे। और उसके उपरांत कौसल्या माता आ गई, अपने पति को कहा कि महाराज धीर धरिए, आप अगर ऐसा धीर नहीं धरते तो बाकी प्रजा का हाल क्या होगा, आप अगर प्राण को त्याग दिए तो सारे अयोध्यावासी अनाथ हो जाएंगे, आपके बाकी बेटे जो है आपके पुत्र वो अनाथ हो जाएंगे, राम को बहुत दुख होगा, शोक सागर में वो डूब जाएगा, तो आप चिंता ना कीजिए, विधाता का जो है उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अभी भरत महाराज को मिलना है, भरत आएंगे, उनको राज गद्दी बिठाना है, तो उसकी तैयारी करना है, तो आप तैयार हो जाइए, धाड़स बंधिए। दशरथ महाराज को थोड़ा धीर दिया। जब सुमंत्रण को देखा तो सुमंत्रण को कहते हैं कि हे सुमंत्रण, कि मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है, सीता कहाँ है और लक्ष्मण जानकी कहाँ है? तो राम 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 ये कहते कहते उनका सांस अखड़ने लगा, हमेशा पूछते राम कहाँ है, राम कहाँ है। तो सुमंत्र ने बता दिया कि किस प्रकार हमने प्रवास किया, गोमती नदी के तट पर हमारा पहला विश्राम हुआ, तमसा नदी के तट पर दूसरा विश्राम हुआ, चित्रकूट गए और भगवान रामचंद्र लक्ष्मण सीता चित्रकूट के पास जंगल में वो एक पर्णकुटी में रह रहे हैं और सब खुशहाल है। और उन्होंने कहा है कि पिताजी को मेरा साष्टांग प्रणाम कहना, पिताजी कहना कि सभी अयोध्यावासियों को संभालना और बार बार मेरा प्रणाम कहना अपनी माताओं को। इस प्रकार से रामचंद्र की कृतज्ञता सुमंत्रण बोल रहे थे, दशरथ महाराज उसको सुन रहे थे, लेकिन मन में एक प्रकार की आग लगी थी कि रामचंद्र जंगल में रह रहे हैं, खाने के लिए क्या है, रहने के लिए कहां पर सो रहे हैं, जो महल में रहने वाला पुत्र है उसका भी नीचे जंगल में कहां भूमि पे लेट रहा है क्या, और खाने के लिए क्या है तो उसको कंदमूल फल। तो मन में सोच रहे थे कि वलकल पहने हुए हैं, खाने के लिए उनको केवल फल कंदमूल है, और इतनी घनी अंधेर रात में जो हिंस पशु वहां पे है उनकी रक्षा कैसे होगी। ये मन में इतना पश्चाताप की अग्नि भड़क रही थी कि सोच रहे थे कि मेरी मृत्यु अभी क्यों नहीं आई अभी तक। तो कौशल्या माता ने धीर दिया, लेकिन कुछ समय के पश्चात ओ राम राम मेरा राम, राम राम कहाँ है, हे राम, के अपना शरीर छोड़ दिए। और कौशल्या माता को पहले बताए कि मुझे ये श्रवण कुमार ने शाप दिया है कि जब मैं रात्रि में जंगल में गया था और मेरे हाथ से गलती से श्रवण कुमार की हत्या हो गई, तो उसके माता पिता ने मुझे शाप दिया था कि आपका भी जो मृत्यु है आपके पुत्र के विरह में होगा। तो कौशल्या विधाता का निर्णय है, मैं इसको टाल नहीं सकता और इसी कारण मुझे जाना पड़ेगा। तो भरत को कहना कि राज तिलक करे और राज को संभाले। और मैं सबसे अयोध्यावासियों को क्षमा चाहता हूं, सब रानियों को मेरा आशीर्वाद कहना, सभी मंत्रियों को मेरा प्रणाम कहना। ऐसा दशरथ महाराज ने शरीर त्याग दिया, वार्ता पूरी महल में फैल गई, सब रानियां जोर जोर से रोने लगी, सब मंत्री आ गए। अयोध्या वासियों को पता चल गया कि दशरथ महाराज ने शरीर छोड़ दिया। अभी राम चले गए जंगल में, लक्ष्मण नहीं है, भरत जी अयोध्या में नहीं है, और अयोध्यावासी सबके विरह में भर भर के रो रहे थे। और तो देखा कि अभी करे तो क्या करे, वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ ने कहा कि अंत्य संस्कार करना है तो पुत्र साथ में चाहिए, तो भरत और शत्रुघ्न दोनों को बुला के लाओ, अपने ननिहाल में गए हैं तो उनको बुला के लेके आओ। तो भरत जी को संदेश दे दिया गया, एक दूत को भेज दिया। भरत जी को पहले ही रात में सपना आ रहा था कि कुछ तो अपशकुन हो रहा है और आग लगी है, कोई न कोई घर का जाने वाला है, ऐसे अपशकुन दिखाने लगे। तो धाड़स बांध के भरत अयोध्या चले आए। अयोध्या में प्रवेश कर देखा कि अयोध्या सुनसान पड़ी है, किसी के चेहरे पे उत्साह नहीं है, शोक सागर में सब प्रजा डूब गई है, और किसी कुछ बात करना है लेकिन अपने ही मन में वो इतने व्यथित थे, दुखी थे, केवल सबका प्रणाम स्वीकार किया और नजर से नजर मिलाए और जिसना महल में आ गए। महल में आने के पश्चात सुमंत्रण, वशिष्ठ मुनि सभी लोगों ने उनको गले लगाया। कई कई माता ने देखा बेटा आ गए हो, हंस के उसका स्वागत करने लगी। ननिहाल में सब लोग ठीक है ना? हाँ, मायके में कोई शांति है ना, सब कुछ? भरत ने कहा ठीक है, सब लोग दुखी है लेकिन ये माता के चेहरे में आनंद की क्या भाषा है, इतने आनंद से क्यों बोल रही है? तो माता क्या बात है कि सब अयोध्यावासी दुखी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है? मुझे लगता है अयोध्या शोक सागर में डूब गई है। बेटा कुछ नहीं, विधाता का जो होता है वो होता है, करने को कौन छोड़ सकता है, समझ लो। कुछ समय पहले दशरथ महाराज को मैंने दो वर मांगे थे और दशरथ महाराज ने दो वर की पूर्ति के लिए राम को वनवास भेज दिया 14 साल के लिए, और आपके लिए राज तिलक के लिए राज्याभिषेक का तैयारी चल रहा है, तो आपको अयोध्या का राज सौंपने के पश्चात दशरथ महाराज ये शरीर को त्याग दिए। जैसे उन्होंने सुना कि दशरथ महाराज ने शरीर त्याग दिया तो फूट फूट के रोने लगे। एक तो भैया वनवास में चले गए हैं और पिताजी इधर शरीर छोड़ दिए, लक्ष्मण जी कहाँ है? बोले लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए। माता सीता कहाँ है? सीता चली गई है। तो कई कई की भर्सना करने लगे, कैसी माता हो, कुटिल हो, दुष्ट हो, कि ये सब आपका ही कपट है, आप चाहती है कि मेरा पुत्र राजगद्दी पे बैठे, और राम इतना धर्मनिष्ठ है, सदाचारी है, सुशील है, सभी प्रजा उसको चाहती है, राम के बिगर कोई रह नहीं सकता, ऐसे मेरे भाई को, भैया को अपने वनवास में छोड़ दिया, और क्या आपको लगता है कि मैं राजगद्दी बैठ जाऊंगा? तो ऐसी माता का धिक्कार हो, जन्म देते ही एक तो मैं क्यों नहीं मरा और ये कुटिल स्त्री अभी तक आप जिंदा क्यों हो? तो तरह तरह के क्रोध भरत के मन में आ रहा था, और शत्रुघ्न उसके साथ में थे, तो शत्रुघ्न ने देखा इसका कारण क्या है, तो बोली कि ये जो मेरी मंथरा है, मेरी दासी, वो दासी ने मुझे कहा था कि भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए और आप रानी बनने वाली हो, और ये मंथरा ने मुझे अपने अच्छे के लिए कहा है। तो जैसे ही ये शब्द शत्रुघ्न ने सुना कि इसके कारण है कि मंथरा, तो मंथरा को वर्णन करते समय आचार्य कहते मंथरा मीन्स व्हाट? मंथरा मीन्स एक कुटिल बुद्धि, कुटिल मन, कि कितना चाहे आप उसको अच्छा सा कृष्ण कथा सुनाओ, भागवत पढ़ने दो, जप करने के लिए उसको बोलो, सालों सालों जप करेगा, सालों साल भक्ति करेगा, लेकिन कुसंग के कारण कैसे बुद्धि बिगड़ती है। तो मंथरा यानी कि एक कुबुद्धि है। आचार्य लोग कहते हैं कि कैकेयी का भरत के ऊपर इतना प्रेम था कि ऐसा नहीं था कि वो रामचंद्र इतना प्रेम था कि भरत और राम को अपने पुत्र मानती थी और सभी पुत्रों के साथ उनका समान प्रेम था, कोई मेरा और कोई पराया नहीं था। लेकिन कैकेयी को बार 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 उकसाने के पश्चात उसकी बुद्धि बिगड़ गई। अरे सुनती हो मूर्ख स्त्री, राम का राज्याभिषेक होगा, कौशल्या दशरथ की प्रिय रानी बनेगी और आपको उसका दासी बनना पड़ेगा और भरत राम का नौकर बनेगा और आपका राज में कुछ चलने वाला नहीं है, तो जरा सोचो, कुछ तो करो, दो वर आपके पास है, कुछ तो मांगो। तो जब ये दुष्ट बुद्धि असंग कुसंग का प्रभाव होता है तो चाहे कितना अच्छा भगवान की ओर प्रेम हो, कितना ज्ञान हो शास्त्र का, कितनी भगवान की पूजा अर्चा की हो, एक क्षण में वो निकल जाता है, एक कुसंग का प्रभाव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक संदेश भक्तों को देते हैं कि असत संग त्याग ही वैष्णव आचार। वैष्णव कौन है? कि जो असत संग में नहीं है। असत संग का मतलब है कि भगवान के ऊपर प्रेम न करके जो व्यक्ति इस विषय वासना को प्रेम करना चाहता है, अरे शरीर को मैं मानता है और उसके लिए राज की जो भी वस्तु है उसके भोग के पीछे लगता है, उसको बोलते हैं कि विषयी लोग, असत संग। तो कैकेयी इस प्रकार से असत संग में जुड़ गई थी मंथरा के साथ। तो भरत महाराज अपनी माता होने के पश्चात भी उसको ऐसी निर्भसना की, आज ऐसा क्या हो गया कि भरत का प्रेम अपनी माता के ऊपर ऐसा लग रहा है कि माता उसकी माता नहीं है, माता उसकी वैरी है। भरत के अंदर क्या उसका हृदय कठोर बन गया था, लोहे के जैसा नहीं। भरत के अंदर जो राम का प्रेम था उसके कारण वो किसी भी परिस्थिति में जो सामने आएगा, राम के बीच में जो दीवार खड़ी करेगा, उस दीवार को तोड़ने के लिए सिद्ध था। तो यह है प्रेम का उदाहरण कि चाहे कोई कितना प्रेमी क्यों ना हो, लेकिन जब भगवान के ऊपर प्रेम करने का बाधा उत्पन्न करता है तो उस दीवार को ये शास्त्र मना करता है, इसको तोड़ दो। इसलिए दो प्रकार के धर्म है, एक धर्म है आत्मधर्म और दूसरा धर्म है देह धर्म। आत्मधर्म क्या है? जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। आत्मधर्म का मतलब है कि भगवान के जो हम लोग अंश है आत्मा, भगवान सबके पिता है, सर्वव्यापी है, परमात्मा है और हम उसके जीव अंश है। और आत्मा और भगवान का सनातन चिरकाल संबंध है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह पवित्रम वेद्य ओंकारम रुक्साम यजुरेव च। तो अहम बीज प्रदापिता, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सब जीवों का पिता हूं, प्रपिता भी हूं। तो भगवान सबके पिता है और सबके माता भी है और ये सनातन संबंध है। लेकिन देह धर्म क्या कहता है? देह धर्म कहता है कि लौकिक धर्म में धरातल पे जो माता पिता है वो मेरे माता पिता है। ये शरीर के माता पिता एक हो सकते हैं, लेकिन ये जन्म में एक माता पिता है, दूसरे जन्म में दूसरे माता पिता है, तीसरे जन्म में तीसरे माता पिता है। ना किसी माता पिता को ये देह धर्म में शांति मिलेगी, ना इस जीव को देह धर्म में शांति मिलेगी। देह के धर्म में कोई शांति नहीं है, देह धर्म में केवल आपस में बिजनेस है, व्यापार है। भरत महाराज का जो प्रेम था वो देह धर्म में नहीं था। उनका भाई के साथ जो प्रेम था, पिता के साथ जो प्रेम था, माता के साथ जो प्रेम था, वो भगवान रामचंद्र के संतुष्टि के साथ था। अगर भगवान रामचंद्र की सब लोग सेवा कर रहे हैं तो ठीक है, अगर भगवान रामचंद्र को कष्ट पहुंचाता है तो उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये देह धर्म जो है वो बदलते रहता है, देह धर्म ये शाश्वत नहीं है। लेकिन केवल आत्मधर्म जो है, भगवान के साथ जो जीव का संबंध है, वो केवल शाश्वत है। इसलिए शास्त्र कहता है कि आत्मधर्म सबसे श्रेष्ठ है, तो आत्मधर्म करने के लिए इस देह धर्म को त्याग देना यह भी उचित है। और इसलिए भरत महाराज कैकेयी को धिक्कार करते हैं और कैकेयी सोचती है कि अच्छा पिताजी का तो अंत्य संस्कार करना चाहिए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी दशरथ महाराज का जो शरीर है वो तेल में रखा था, तो अंत संसार करने के लिए सारी तैयारी करना बाकी था। तो भरत महाराज और शत्रुघ्न ने कहा कि देखिए अभी समय हो रहा है, अयोध्यावासी राह देख रहे, दशरथ महाराज को संस्कार करना चाहिए, तो आप सब लोग उस कार्य में जुट जाओ। सभी अयोध्यावासियों को बुलाया, दशरथ महाराज के शरीर को वैकुंठ स्थान लेके गए। वहां पर उनके बॉडी को चंदन की लकड़ी, घी, बहुत सारा सुगंधी द्रव्य इत्यादि लाकर उनके शरीर को वैदिक मंत्रों के साथ, वैदिक संस्कारों के साथ संपन्न किया गया, अंत संस्कार हो गया। और उसके पश्चात सब लोग लौट रहे थे, तो वशिष्ठ महाराज जी कुछ शोक सभा के लिए कुछ शब्द कह दिए कि बोले कि पिताजी ने अपना कार्य निभाया है, पिताजी का धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने अपने राजधर्म को निभाया, पुत्र धर्म को निभाया, और जो अपने रानियों को वचन दिया था वो भी पूरा किया। एक क्षत्रिय को कभी भी आपने दिए वचन को मोड़ना, उसका परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए वशिष्ठ महाराज ने कहा कि ये जो दशरथ महाराज ने किया वो ठीक किया। दशरथ महाराज के मन में सभी पुत्रों के प्रति स्नेह था, सबका प्रेम उनके ऊपर था, और ना कि अयोध्या के कोई व्यक्तियों के उनके प्रति ईर्ष्या थी, ना उनका किसी के साथ ईर्ष्या था। तो दशरथ महाराज का नाम ये सदियों में चलता रहेगा, एक ऐसा राजा जिन्होंने अपनी प्रजा को किसी संकट में नहीं डाला। तो अभी संस्कार होने के बाद शत्रुघ्न और भरत जब ही सोच रहे थे कि उसके उपरांत क्या करना है, शत्रुघ्न ने मंथरा को ऐसा किया था कि उनका क्रोध निकाल दिया। शत्रुघ्न ने मंथरा को उसके कुबड़ के ऊपर लात मार दी, उसको बहुत गाली गलौज किया, और फिर उसके दांत टूट गए, माथा फूट गया। बोली कुटिल स्त्री, इस राज में आई हो झगड़ा लगाने के लिए, ये कपट करने के लिए, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं, इस राज से चली जाओ। तो भरत जी कहते हैं कि भाई छोड़ दो उसको, ये अनजानी है, अज्ञानी है, लेकिन अगर उसको मार डालते हैं तो मेरे राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। जो व्यक्ति दूसरों से क्रोध करता है और क्रोध से किसी को हानि पहुंचाता है, तो मेरे राम जी वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो उसको माफ करना एक ही धर्म है, तो उसको क्षमा कर दो। तो इसलिए शत्रुघ्न उसको छोड़ देते हैं और मंथरा उसके पश्चात वहां से उठकर निकलकर भाग जाती है। तो कैकेयी कहती है कि आपके पिताजी बहुत भाग्यशाली थे, उनका जीवन और उनका मरण भी मंगलमय हो गया। तो वो कहते हैं कि मां वो सब ठीक है, लेकिन राम वनवास की जो सम्मति आपने दी है, तो उसके लिए मुझे नरक में जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता कि ये सारा जो पाप है ये मैं अपने सिर पे लेना चाहता हूं, इसलिए मुझे राजगद्दी, ये राज तिलक कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी से अभी जाके वशिष्ठ मुनि से कहता हूं कि तैयारी जो हो रही है उसको रोको, और मेरी इच्छा है कि जब तक मैं राम जी का दर्शन न करूं तब तक मेरे मन में शांति नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पापमस्तु तदामातम ब्रह्म हत्याशतोद्भवम हत्वा वशिष्ठ खड्गेन अरुन्धता समन्वितम भूयात्वप अखिलम मम जानामि यद अहम इत्थेव शपथम कृत्वा रुरोदम भरतस्तदा। कि ये भी मुझे स्वीकार है कि अगर गुरु वशिष्ठ और माता गुरु पत्नी अरुंधति जी का मारने का पाप मुझे लगे तो मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूं। फूट फूट के भरत जी रुदन कर रहे थे। कौशल्या जी ने भरत जी को अपने छाती से लगाया, बेटा मैं तुमको जानती हूं पहचानती हूं, राम से तुम्हें कितना प्रेम है, राम तुम्हें कितना प्रेम करते और तुम्हारा राम के ऊपर कितना प्रेम है मैं अच्छी तरह जानती हूं। राम तुम्हें अपने प्राण से प्रिय है, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। लेकिन ये दोष तो मेरे भाग्य का है, विधाता आज प्रतिकूल है और इसलिए आश्वासन दिया कि जल्द ही राम को राम के दर्शन आपको हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। और उसके बाद वशिष्ठ महाराज ने भरत जी को आज्ञा दी कि महाराज दशरथ के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, उनका मरण मंगलमय हुआ है और मृतात्मा के पीछे रोने से उस व्यक्ति को दुख होता है, इसलिए शांति रखो। और उसके बाद वशिष्ठ जी महाराज कहे कि आपके पिता जो है भगवान राम का अंत समय में नाम लेके चले गए तो भगवान के धाम में साकेत में गए और कुछ उपदेश के पश्चात उन्होंने भरत महाराज को कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है कि राम जी के दर्शन करना है तो मैं सब मंत्रियों को कहता हूं कि रथ जोड़ो, सभी अयोध्यावासियों को बुलाओ और सभी मंत्रियों के साथ वशिष्ठ मुनि और श्री सुमंत्रण और उसके पीछे शत्रुघ्न भरत सभी माताओं को लेके श्री प्रजाओं को लेके वशिष्ठ महाराज ये जो है सारे लोग चल पड़े भगवान राम जी के दर्शन के लिए। तो उसके बाद चलते 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 भरत जी मन में सोच रहे थे सीताराम 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 कि हर एक क्षण भगवान की याद आ रही थी, कब दर्शन होगा कब दर्शन, मेरे राम कैसे हैं, कौन से रास्ते चले गए और रास्ते में उनको खाने पीने के लिए कुछ सुविधा उत्पन्न हुई नहीं हुई, क्योंकि सुमंत्रण साथ में थे तो सुमंत्रण ने कहा कि सीताराम लक्ष्मण हनुमान ने आज यहां विश्राम किया था, यहां पर सोए थे, एक कंदमूल फल खाए थे और जब सुना कि वस्त्रों को त्याग दिया है तो भरत महाराज ने अयोध्या में अपने वस्त्रों को त्याग दिया और वो भी वलकल पहनने लगे। बोले मेरे भाई मेरे भैया अगर वस्त्र नहीं पहनते हैं और जो भोजन नहीं करते हैं तो मैं भोजन को त्याग दूंगा, केवल फल और कंदमूल खाके जीवा जीवित रहना चाहता हूं और जैसे वो जिस मार्ग से जिस प्रकार गए उसे मुझे उसी मार्ग से उस प्रकार चलना है। वशिष्ठ महाराज ने अरुंधति को समझाया, बेटा आप रथ के ऊपर नहीं बैठोगे तो सारे अयोध्यावासी को पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए आप उनके लिए कम से कम रथ में बैठो। और सभी का रामचंद्र जी के ऊपर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कई लोगों ने कितने दिन तक उपवास रखा है, कुछ फल के मारे जी रहे हैं, कुछ केवल दूध पी के जी रहे हैं और सब न दिन में सोते हैं न रात में सोते हैं, भगवान राम का स्मरण करते करते कब राम जी वन से लौटेंगे, कब राम जी वन से लौटेंगे, कब जानकी का दर्शन होगा, कब लक्ष्मण का दर्शन होगा, इस प्रकार वो रुदन करते करते खाना पीना छोड़ देते हैं। तो उनके लिए तो कम से कम आप रथ में बैठो। तो बनाता है कि 60,000 ये जो घोड़सवारी है, 9,000 हाथी है, कितने तो रथ है, सबको जोड़ के अयोध्यावासियों को लेके भरत जी चल पड़े। वशिष्ठ का रथ था, उनके पीछे शत्रुघ्न अरुंधति एक साथ बैठे थे वशिष्ठ महाराज जी के साथ और कौशल्या माता सुमित्रा और कैकेयी एक साथ एक रथ में थे और तीनों का रथ चल रहा था, उसके पीछे मंत्रीगण प्रजाजन। एक दूसरे में यही चर्चा थी कि हमें भगवान का दर्शन होने वाला है, राम जी का दर्शन होने वाला है, राम जी कैसे हैं, सीता जी कैसी है, उस प्रकार मन में सोच रहे थे। और चलते 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 वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में भगवान रामचंद्र जी ने वहां पे विश्राम किया था। तो श्रृंगवेरपुर पहले पहुंचने से पहले वहां के जो राजा है, गुह राजा का वर्णन आता है, जो बाद में निषाद राज बन गए, गुह राजा ने दूर से देखा कि भरत अयोध्या के सारे सैनिकों को लेके, मंत्रियों को लेके, सब प्रजाओं के साथ घोड़सवार है, उनके साथ हाथी है, सबको लेके युद्ध की तैयारी में वो शायद राम जी को मारने के लिए आ रहे हैं। उसको राज करना है और उसकी इच्छा है कि राज निष्कंटक हो। राम वन में अकेला है, राम को मार दूंगा, उसके बाद राज्य करूंगा। तो गुह ने अपने सारे जो भिल्ल समाज के जो उनके साथी थे, सैनिक थे, उनको कहा कि भरत के साथ युद्ध करना है। ये सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए प्राण को भी छोड़ देना, इसलिए भरत और उनके सारे सैनिकों को गंगा पार करना देना नहीं है। गंगा पार करने से पहले उनकी मृत्यु आनी चाहिए, तो सब लोग तैयार है ना, सबको अपने शस्त्र अस्त्र लेके अपने अपनी जगह पे खड़ा किया। कोई झाड़ के ऊपर थे, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, कोई आगे पीछे, सब लोगों को पहरा लगा दिया। और उस उपरांत उनके ही एक सैनिक को छींक आ गई, और छींक आने के पश्चात उसने कहा कि निषाद महाराज अपशकुन है, ये अच्छा नहीं है कि आपने जो तैयारी की है वो अच्छा नहीं है, मुझे तो विपरीत दिखाई दे रहा है, आप जो सोच रहे वो सच नहीं है। बोले क्या? अरे हो सकता है भरत महाराज राम जी को मिलने के लिए जा रहे हैं, और भरत और राम का जो प्रेम है उसकी महिमा सब अयोध्यावासी जानते हैं, वशिष्ठ मुनि उनके साथ में है, सब मंत्री उनके साथ में है, इसलिए चिंता करने कोई बात नहीं है, पहले उनसे मिलो, आप आगे जाओ, उनसे मिलके क्या चर्चा होती, उसके बाद उसको क्या चाहिए, तो कैसे पहचान करना। तो कहा कि तीन प्रकार के अन्न जो उनके साथ लेके चलो, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो क्या लेके जाना चाहिए? बोले पहले कंद मूल और फल लेके जाओ, दूसरा इसमें उनके लिए मांस मदिरा ये लेके जाओ, और तीसरा जो भोजन है रजोगुणी भोजन वो लेके जाओ, जिसमें मिर्च मसाला ज्यादा है, तीखा है, स्वादिष्ट है, पकोड़ा भुजिया ये वो सब। तो भरत महाराज जी को अगर भोजन के ऊपर रुचि आ गई, किस प्रकार का भोजन वो करना चाहते हैं, तो समझ लेना कि उनके मन में उस प्रकार का भाव है। व्यक्ति की पहचान उसके अन्न से हो जाती है, किस प्रकार का स्वाद उसको रुचि है। तमोगुणी व्यक्ति को बहुत ही खट्टा, तीखा और मसाले युक्त पदार्थ जीवा को अच्छा लगता है। रजोगुणी व्यक्तियों के लिए मिठाई बहुत ही अच्छा, स्वीट्स, वो स्वीट भी लेके आए थे। और सत्वगुणी व्यक्तियों के लिए फल, कंदमूल फल इत्यादि। तो गुह महाराज ने तीनों को भरत महाराज के सामने कहा, प्रणाम किया, बोले भरत महाराज कि आप आए हो इतने सैनिकों को लेके, हमें आनंद हो रहा है लेकिन हमें चिंता है। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा कि भरत, ये गुहक महाराज है, निषाद राज है, राम के मित्र है, राम के भक्त है। जैसे ही उन्होंने कहा कि राम के भक्त है, आपने रस से नीचे उतर गए, छलांग मार दी और जाके निषाद राजा के गले पड़ गए। उन्होंने उस भोजन को देखा तक नहीं, सिर्फ मन में उनका भाव था कि ये राम के भक्त है, ये राम के मित्र है, राम की उन्होंने सेवा की है, तो निषाद राज को गले लगाया और मन में राम के बारे में सोच रहे थे। निषाद राज ने सोचा कि जो मैंने पदार्थ लेके आए थे उसके ऊपर देखा तक नहीं, केवल मन में राम 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 का ही स्मरण है, तो कितना बड़ा मैंने पाप किया है, कितना मैंने उनके बारे में गलत सोचा, और भरत महाराज को मारने के लिए मैंने अपने सैनिकों को कहा था। तो देखिए भरत महाराज के प्रति कितने लोगों के मन में ऐसा कुभाव जगता है, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन भरत महाराज के हृदय में उनके प्रति कुभाव नहीं आता। उनका हृदय साफ होने कारण दूसरे के हृदय में अगर कुभाव जागे, कुतर्क हो, तो किस प्रकार हमें अपने मन को संभालना है, ये भरत महाराज के जीवन से हम देखते हैं कि तुरंत वो कह सकते हैं कि निषादराज और उनकी सेना को खत्म करो, जो मेरे और राम के बीच में एक पर्दा डालने की कोशिश है, तो मेरी भावनाओं को समझते नहीं, मेरा राम के ऊपर इतना स्नेह, इतना प्रेम है, तो कुछ बोले नहीं। लेकिन वशिष्ठ महाराज ने कहा जब कि भरत महाराज राम जी को मिलने जा रहे हैं, तो निषाद महाराज को पश्चाताप हो गया और पश्चाताप की अग्नि में वो रोने लगे। भरत महाराज ने उनको गले लगाया। निषाद राज ने फिर देखा कि उनकी माताएं साथ में है, वशिष्ठ मुनि है, अरुंधति है, तो उनको दूर से ही प्रणाम किया। अपनी जो माताएं थी, राम जी की माता का दर्शन मुझे साक्षात यहां पे मिल रहा है, कितना मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं एक भिल्ल जाति का हूं, लेकिन पता नहीं हम लोग तो चोर लुटेरे हैं, नशापान करने वाले, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि केवल न सीता राम लक्ष्मण के दर्शन हो गए, लेकिन उनका जो प्रिय भाई है भरत का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मन में ही वो हर्ष और एक तरह से रुदन चल रहा था, और उसके पश्चात सभी माताओं को, सभी लोगों को उनके रहने की सुविधा की, सबको वहां पे एक दिन का रात का मुक्काम हो गया, सब लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई। और उसके पश्चात जब कहा कि कल सुबह आपको निकलना है तो सारी तैयारी हम कर देंगे, सभी नाविकों को कहा कि अपनी अपनी नौका है ये गंगा के तट के ऊपर तैयार करो, सभी अयोध्यावासी सभी लोगों को ये गंगा पार करके उस तरफ छोड़ना है। तो निषाद राज ने सुबह होते ही सबको अपना अपना स्नान करने के पश्चात पूजा अर्चा हो गई, सभी लोग निकलने की तैयारी में थे, नौका वालों को नौका जोड़ने के लिए कहा। भरत महाराज ने निषाद राज को कहा कि भगवान कहाँ सोए थे, थोड़ा मुझे जगह देखना है। तो उन्होंने एक जगह दिखाई कि भगवान जो है ये शीशम वृक्ष के नीचे एक छाल के ऊपर सोए थे। तो शीशम वृक्ष के नीचे भगवान सोए हैं, सुनने के बाद उनको फिर से रुदन हो गया कि महल में रहने वाले मेरे भैया, पता नहीं विधाता ने उनके साथ क्या किया, सीता माता और मेरे भैया यहां पे सोए हैं। कहा कि लक्ष्मण पूरी रात पहरा दे रहे थे, जाग रहे थे। तो उस वृक्ष को उन्होंने आलिंगन किया, उस जगह को अपना सिर लगा दिया और राम 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 राम, सीताराम सीताराम, जानकी माता, ऐसा कह के वो रुदन करने लगे। निषाद राज ने उनको सांत्वना दी, बोले भैया का दर्शन जल्दी होने वाला है, आप धाड़स बांधो। उसके पश्चात भरत महाराज और सारे अयोध्यावासी सब माताओं के साथ गंगा पार किए, और दूसरे दिन चलते चलते वो भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। उनको पता चला कि भरद्वाज मुनि का आश्रम यहीं पास में है, गोमती नदी के पास। लेकिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाना, बोले कि ये साधु की सभा में जाना हमारे लिए उचित नहीं है, कि भरद्वाज मुनि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और अगर मेरे मन की ऐसी बातें उनको समझ में आ गई तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए मैं यहां पे रुकता हूं, आप लोग जाके दर्शन कीजिए, प्रयागराज में स्नान कीजिए। तो उसके पश्चात वहां के लोगों ने कहा कि देखिए यहां की एक रीत है, यहां का एक नियम है, जो भी व्यक्ति प्रयागराज में आते हैं तो गंगा जी का, यमुना जी का दर्शन करके, स्नान करके ऋषिशस्त्र भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, उनकी आज्ञा लेते हैं, उनसे कुछ सुनते हैं और फिर अपने मार्ग में चले जाते हैं। तो बोले कि ऐसा नियम है तो नियम को पालन करना पड़ेगा। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में शत्रुघ्न भरत चल पड़े, उनके साथ में बहुत सारे लोग थे, तो सबने प्रयागराज में स्नान किया। तो कहते हैं कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है। एक कहते हैं कि ज्ञान है, दूसरा कहते हैं कि भक्ति है। और कहते हैं एक श्याम वर्ण है और दूसरा गौर वर्ण है। आप थोड़ा सा नजर देख के ठीक से देखोगे तो दोनों में कलर में अंतर दिखाई पड़ेगा। तो कहते हैं ज्ञान का प्रतीक है और दूसरा भक्ति का प्रतीक है। बोले केवल ज्ञान हो, भक्ति ना हो, तो ज्ञान अभिमान को बढ़ा देता है, और भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भी वो पूरा नहीं है। भक्ति अंधी हो जाती है, भक्ति क्रूश हो जाती है। तो इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों धष्ट पुष्ट होना चाहिए। तो भक्ति क्या हो जाती है? भक्ति तगड़ी बन जाती है, भक्ति हमेशा खुश रहती है। लेकिन जिसका ज्ञान बहुत है लेकिन वैराग्य नहीं है तो भक्ति क्रूश हो जाती है। इसलिए संतों ने दोनों को इंपॉर्टेंट दिया है कि ज्ञान के साथ भक्ति होना चाहिए और भक्ति के साथ वैराग्य भी होना चाहिए। भक्ति मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा, लेकिन उस प्रेममयी सेवा के अंदर अगर वैराग्य की भावना नहीं, डिटैचमेंट नहीं है, तो कहते हैं कि वो भक्ति भी पूरी नहीं है, उसमें स्वार्थ की भावना जगी है। कि भक्ति ये कर्म मिश्रित भक्ति है कि सेवा तो कर रहा है लेकिन फल की अपेक्षा है। इसलिए भक्ति के साथ वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, फल की अपेक्षा नहीं है, तो भक्ति पूरी होती है। तो भक्ति से भगवान के साथ जो चिरस्थायी संबंध है उसका प्रेम बन जाता है हृदय में। लेकिन ज्ञान से हो सकता है कि मुक्ति प्राप्त होगी, लेकिन ज्ञान से भक्ति नहीं मिलने वाली है। ज्ञान से केवल ज्ञानी लोग भगवान का चिंतन करते हैं, ये शरीर से देह आत्मा से मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये चिंतन करके एक बार शरीर से विमुक्त हो सकते हैं, और मुक्ति की अभिलाषा करने के बाद वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानी लोगों को ज्यादा श्रेष्ठ माना नहीं गया है। एक कर्मी, ज्ञानी, योगी, इनको शास्त्र में ज्यादा महत्व नहीं है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्त है। क्योंकि ये जो भक्त है, भक्तों को न ज्ञान की अभिलाषा है, न कर्म की अभिलाषा है, मुक्ति की अभिलाषा है, न कि भोग की अभिलाषा है। भक्त को भगवान की संतुष्टि की अभिलाषा है। जिसका सर्वोच्च धर्म जो है जीव का, भगवान का आनंद ही मेरा आनंद है, भगवान की सेवा ही मेरा धर्म है। तो इस प्रकार से जो अपने आप को भगवान की सेवा में जोड़ देता है, भगवान उसके हो जाते हैं, भगवान उसका स्मरण करते हैं, उस भक्त का स्मरण करते हैं जिसको कोई अभिलाषा नहीं है। तो भरद्वाज मुनि कहने लगे कि राम जी एक बार इस प्रयागराज में स्नान करने के लिए सुबह का जो विधि था वो करने के लिए आ गए, तो वहां पे मैं पुरोहित था, तो पुरोहित को सुबह का जो यज्ञ के समय मंत्र बोलना पड़ता है, तो उस समय मैंने भरत खंडे ऐसा एक शब्द कहा था, भारत वर्षे भारत खंडे। तो जब मैंने भारत खंडे शब्द कहा तो राम जी के आंखों से आश्रु आने लगा, आश्रुपात होने लगा। तो मैंने उनको कारण पूछा कि हे प्रभु, ये आपका आंसू आने कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि अगर भरत को पता चलेगा कि मैंने अयोध्या को त्याग दिया है और मैं वन में जंगल में 14 साल के निवास करूंगा, तो भरत की अवस्था क्या है? भरत अयोध्या में क्या करता होगा, कैसे दिन निकालता होगा, कैसे उसका 14 साल जाएगा, शायद वो प्राण को त्याग सकता है। तो उसकी मुझे चिंता हो रही है कि भरत कैसा है, भरत कैसा है, भरत ने अपने प्राण को रखा है कि नहीं। तो इसी कारण बोले कि चिंता मत करो। भरत को कहा कि आपके भाई आपका हमेशा चिंतन करते हैं, आप इतने सर्वश्रेष्ठ उत्तम प्रकार के भक्त हो, आपके पास नीति है, आपके पास चरित्र है, आपके पास सद्गुण है, देवता लोगों से श्रेष्ठ आपका स्थान है, देवता लोग आपकी पूजा करते हैं। तो भरत महाराज का कि राम आपका अगर स्मरण करते हैं तो आपके जैसा कोई भक्त नहीं है, न होगा। भरत महाराज ने उसके ऊपर कुछ कहा नहीं, लेकिन भरद्वाज मुनि ने कहा कि आपको एक 2-3 दिन यहां पर रहना पड़ेगा। तो यहां पर सब जंगल है, वन है, विचरण करो। लेकिन कहा कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरी माताएं हैं, मेरे गुरु वशिष्ठ मुनि हैं, अरुंधति है, गुरुपत्नी है और इतने सारे अयोध्यावासी हैं कि हजारों हजारों लोग हैं, हाथी है, घोड़े हैं, सबकी व्यवस्था कैसे होगी। तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, कि भरद्वाज मुनि तपस्वी तो थे लेकिन तपस्या का वो जो फल है उसका प्राप्त नहीं करते, लेकिन दूसरों की सेवा करना उनका एक धर्म था। बोले कि आप चिंता मत करो, उनके आश्रम में गाय थी, उसका नाम था कामधेनु। तो कामधेनु गाय का वो सेवा करते थे और कामधेनु को गाय को क्या खिलाते हम लोग, घास खिलाते और घास से दूध निकालते। तो कामधेनु को कहा कि आज मेरे आश्रम में जितने सारे मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, उनका मुझे स्वागत करना है, उनका मुझे उपरोक्त जो सेवा है उस सेवा करना है, इसलिए आप ऐसा करो कि सबके लिए रहने का व्यवस्था, सबके लिए उनके रुचि के अनुसार प्रसाद, सबके व्यवस्था करो। तो कामधेनु ने जैसे एक स्वर्ग बना दिया। आजकल के लोगों को लगता है कि ये क्या शास्त्रों में कहा गया है, सब झूठ है, लेकिन देखिए शास्त्र में कहा गया कि अष्ट सिद्धि ये प्राप्त होती है जब मनुष्य तपस्या करता है, और तपस्या के ऊपर जब भगवान प्रसन्न होते तो उसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। तो अष्ट सिद्धियां क्या है, अर्णिमा, महिमा, लागिमा, इशिता, वशिता, कामवशिता, प्राप्ति, कामवशिता, जो भी है। तो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, ग्रहलोक को निर्माण कर सकता है। हनुमान जी को कहते हैं कि अष्ट सिद्धि उन्हीं के दाता, असबरदीन जानकी माता, हनुमान जी हमारे उनके पास अष्ट सिद्धि है। भरद्वाज मुनि ने तुरंत यह आदेश दिया, आठ सिद्धियां खड़ी हो गई और सारा का सारा निर्माण कर दिया। महल में बिस्तर है, पलंग है, पानी पीने की जगह है, स्नान करने की जगह है, सब कुछ। स्वर्ग में जो सुविधा है, सारी सुविधा इस धरती में सभी लोगों को प्राप्त होगी, अपने अपने रुचि के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। सभी को भरत महाराज ने कहा कि जाओ अपने अपने निवास स्थान खोजो और आपकी रहने के सौ की प्रसाद आपको थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। सिद्धियों को आदेश दिया कि सबको प्रसाद पहुंचा दो। प्रसाद जगह पे आ गया, माताओं को प्रसाद मिला। और जब भरत महाराज जी के पास भरद्वाज मुनि ने चार दासियों को भेज दिया, जाओ उनके महल में उनके बिस्तर का व्यवस्था करो और उनके लिए अच्छे अच्छे बहुत प्रकार के मिठाई, बहुत प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना के उनको खिलाओ, क्योंकि इतने समय से चल के आ रहे, कुछ खाए नहीं होंगे, थके होंगे। तो चार सिद्धियां उनको भरत महाराज को मिलने के लिए आ गई और भरत महाराज को कहा कि देखिए आपके लिए हमने ये भोजन की व्यवस्था की है, आप ये स्वीकार करो। भरत महाराज ने कहा कि मेरे भाई, मेरे भैया, इन्होंने सारे ऐश्वर्य को त्याग दिया है, केवल कंदमूल और फल खाते हैं और जमीन पे लेटते हैं, और मैंने निश्चय किया है, व्रत ले लिया है कि जब तक मैं राम जी से मिलूं नहीं, राम जी को अयोध्या जब वो देखेंगे, अयोध्या आएंगे, तभी मैं इस अन्न को स्वीकार करूंगा, मेरे लिए उचित नहीं है। तो भरत महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया। चार सिद्धियां वहां पे रुक गई। भरत महाराज पहला प्रहर हो गया, अभी सोएंगे, दूसरा प्रहर हो गया, अभी सोएंगे, तीसरा प्रहर हो गया, अभी सोएंगे, लेकिन भरत महाराज साढ़े तीन प्रहर हो गए, सुबह होने वाली थी लेकिन दासियों ने कहा कि अभी लेट जाओ, बोले मेरा जब बाकी है। सीताराम 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 राम 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 कहते कहते रात निकल गई। आश्रु बहा रहे थे पूरी रात कि राम के दर्शन कितने समय से, जैसे युगायतम निमिषण चेतना वो कहते हैं। भगवान के भक्तों को भगवान का विरह होता है तो उसको कहते हैं कि वैष्णव। अगर भगवान का विरह नहीं होता है तो वैष्णव कनिष्ठ स्तर का समझना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। हमें हमेशा लगना चाहिए कि भगवान का, भक्तों का, अपने गुरु का मुझे संग कैसे प्राप्त होगा, भगवान की सेवा कैसे प्राप्त होगी, भगवान का दर्शन कब मिलेगा। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि भगवान का दर्शन तो इस जन्म में नहीं होगा, देखेंगे अगले जन्म में देख सकते हैं। लेकिन भक्त को हमेशा एक झांकी होनी चाहिए कि भगवान का दर्शन मुझे कुछ क्षण के लिए भी हो गया तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और भगवान को देखने के लिए मेरे आंखों में एक प्रेम कब बरसेगा, प्रेम का अंजन कब मेरे हृदय में उत्पन्न होगा। इसलिए वो हमेशा सोचता है कि भगवान को देखने के लिए मेरे पास प्रेम की आंखें नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं जिसे मैं भगवान को देख सकूं, लेकिन भगवान अगर आप कृपा करेंगे तो आपका मुझे दर्शन हो सकता है, आप कृपा करेंगे तो आपके भक्तों का दर्शन संग मिल सकता है, आप कृपा करेंगे तो आपका हरिनाम मुझे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार एक भक्त भगवान के दर्शन की अभिलाषा अपने हृदय में हमेशा बढ़ाते रहता है। तो भरत महाराज के हृदय में वो अभिलाषा कि श्री राम के दर्शन नहीं हुए, भैया के दर्शन नहीं हुए, भैया के दर्शन कितने समय से दर्शन नहीं हुए, तो उसके उपरांत दो तीन प्रहर होने के बाद सुबह हो गई, सब लोग उड़ गए, स्नान संध्या ये सब सुबह का प्रातःकालीन जो उनका पूजा था वो गुरुजी ने अपना पूजा किया, सभी लोग तैयार हो गए और भरद्वाज मुनि ने कहा कि बेटा चिंता मत करो कि चित्रकूट की दिशा क्या और आप प्रयाण करना, भगवान राम जी आपकी राह देख रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है कि मुझे पता था कि आपका जो प्रेम है धर्म है सर्वोच्च है, सभी शास्त्र उसका बखान करेंगे कि आपने जो निर्णय लिया है उचित है, कि आपका राज्याभिषेक राजतिलक होने की तैयारी चल रही थी लेकिन आपने उसको छोड़ दिया और भैया को मिलने के लिए आप दर्शन करने के लिए आतुर हो गए हैं। तो कहा कि आपने जो ही किया है वो सब सर्वश्रेष्ठ है, तो मेरा आशीर्वाद है कि जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी और राम जी जल्दी ही अयोध्या लौट आएंगे और राम का राज्याभिषेक होगा और आपके हृदय को शांति मिलेगी। उनका आशीर्वाद लेकर चरण को स्पर्श करके भरत महाराज आगे निकले, सभी सेनाओं को आदेश दिया कि आगे चलो, देखिए रास्ते में कितनी मुश्किल आती है लेकिन प्रसंग को कैसे वो अनुकूल भाव से समझ जाते हैं। रामचंद्र जी को सपना आया कि भरत अपने सैनिकों को लेके मेरी तरफ इस जंगल की तरफ आ रहा है वन में, काश वो मुझे मारना चाहता है क्या, मन में एक भाव आ गया, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लक्ष्मण के मन में भगवान राम के चेहरे के ऊपर कुछ चिंता सा दिखाई दिया, तो उन्होंने पूछा लक्ष्मण ने कि भैया आज मुझे लगता है कि आप कुछ द्विधा में हो, आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, चिंता की क्या बात है। राम ने कहा कि भरत जी अपने सैनिकों के साथ थोड़ी देर में वन में पहुंचने वाला है, उसके साथ सारी सेनाएं हैं और क्या उसका विचार आक्रमण का है। लक्ष्मण ने कुछ सोचा नहीं, अपनी तलवार निकाल दी, भैया ये भरत और सारी सेना का विमोड़ मुझे करना है, सबको मार डालना है, मैं इसको सहन नहीं कर पाता, एक कैकेयी का पुत्र एक कुटिल है, क्योंकि जिस बैल को जो बैल पहले से ही कड़वी है उस बैल को फल कैसा आ सकता है, वो फल ही कड़वा ही होगा, एक कैकेयी का दुष्ट पुत्र एक कैकेयी दुष्ट माता है और इसका पुत्र भी दुष्ट ही है। भगवान राम ने बोला लक्ष्मण शांत रहो, ऐसे विचार करना उचित नहीं है, थोड़ा सोचो, धीरज बंधो। भगवान रामचंद्र ने फिर से अपने मन को चिंतन किया तो उनको याद आया कि भरत के मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, भगवान राम सबके पिता है, सबके परमात्मा है, सबके हृदय में क्या चल रहा है ये भगवान जानते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शौर्यं तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढानि माया, सारे जीव इस माया रूपी शरीर जो यंत्र है उसके अंदर स्वार होके अलग अलग योनि भटक रहे और अपने विचार करते हैं कि मुझे क्या मिलने वाला है, शांति कैसे मिलेगी, मेरा फायदा किसमें है, लेकिन भगवान सबका इच्छा पूरा करते हैं। भरत महाराज के मन में क्या चल रहा था भगवान रामचंद्र जी को पता था, लक्ष्मण को कहा कि भरत मुझे मिलने के लिए आ रहा है। उनके साथ वशिष्ठ मुनि है, गुरु माता है, सभी माताएं उनके साथ है, सुमंत्रण है और चिंता कोई बात नहीं है। फिर भी लक्ष्मण के मन में वो क्रोध था ही, किस तरह से लक्ष्मण जी को शांत किया और उसके उपरांत वो राह देख रहे थे। लेकिन जैसे ही भरद्वाज मुनि का आश्रम छोड़ा तो भरत महाराज ने कहा कि अगर भगवान राम यहां से पैदल गए हैं, उनके पैर में कोई चप्पल नहीं, कोई कुछ जूता नहीं, जो पहले के लोग खड़ाव पहनते थे, कुछ नहीं है, तो मुझे कोई रोको मत। रथ से उतर गए और बोले कि अभी यहां से मुझे पैदल जाना है, मेरा भैया अगर पैदल चलता है जंगल से वन से तो मुझे पैदल चलना है। तो वशिष्ठ मुनि को विनती की कि मुझे इसका आग्रह मत करो, अभी यहां से तो मुझे केवल चलना है, रथ में बैठना नहीं है। तो भरत महाराज जी चलते चलते आ गए और जैसे ही सब उनके साथ में सेनाएं थी आगे चल रही थी, आगे चल रही थी, आके रुक गए सब लोग, भरत महाराज पीछे से आ गए और जब देखा कि राम ने देखा कि भरत आ गया है, राम जी दौड़ते हुए आए, उसके पीछे लक्ष्मण आ गए और राम जी ने भरत को गले लगाया। उसके उपरांत दोनों एक दूसरे की हृदय से हृदय लगा के, ऐसा शास्त्र कहते कि दोनों का मन, दोनों का हृदय, दोनों का सब एक हो गया था, कि कोई उनको शरीर की सूद नहीं थी। भरत महाराज चलते चलते आ रहे थे लेकिन इतनी तेज धूप थी, उनके पैरों को गर्मी के कारण, धूप के कारण उसको फोड़ी आ गई थी, बराबर है ना, फोड़ी बोलते हैं उसको, तो लेकिन उनको अपने पैरों की शोध नहीं थी कि इतना बड़ा तेज धूप में मैं चल के आया, कोई पैर में वाहन नहीं है। लेकिन भरत महाराज जी को जब श्री राम का दर्शन हो गया तो जितने सारे मन में विपदाएं थी, जितनी सारी शंकाएं थी, जितना सारा क्रोध था अपनी माताओं के ऊपर, कैकेयी के ऊपर, मंथरा के ऊपर, तो सारा क्रोध शांत हो गया। वो सोचने लगे कि इस सब का कारण मैं हूं, इस सब अनर्थ मेरे कारण है, कि मेरी माता का कोई दोष इसमें नहीं, कैकेयी कोई दोष नहीं, और ये राजगद्दी का जो विचार है इसको त्याग देना, और कैसे मैं समझाऊं प्रभु राम को कि आपका राज तिलक करना है। दोनों का आपस में चर्चा हो गई। उसके पश्चात वशिष्ठ मुनि ने भरत जी को अपने आश्रम बुलाया। ऐसे तो वशिष्ठ मुनि चल के राम जी के पर्णकुटी में चल पड़े थे लेकिन राम जी वहां पे रुके अपने भाई के साथ। लक्ष्मण शत्रुघ्न से मिले, राम जी शत्रुघ्न से मिले और उसके दौरान वशिष्ठ मुनि और भरत महाराज का चर्चा प्रारंभ हो गया। वशिष्ठ मुनि से भरत महाराज कहने लगे, हे गुरुवर्य, मैं जानता नहीं हूं कि किस प्रकार मैं राम को समझाऊं, ये नीति, ये धर्म, ये ज्ञान, मैं इसको सब भूल गया हूं और मुझे एक ही दिखाई दे रहा है कि ये जो राज तिलक का हम लोग सामान लेके आए हैं, ये राम का राज तिलक होना चाहिए, राम राजा बनना चाहिए और मैं उनके चरणों की सेवा करूं। या तो ऐसा करो, सीता और राम को, लक्ष्मण को अयोध्या भेज दो, शत्रुघ्न और मैं भरत दोनों वन में 14 साल के लिए रहेंगे। या तो सीता और राम को दोनों को भेज दो अयोध्या में, मैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों ये वन में रहेंगे और 14 साल के लिए हम तपस्या करेंगे, लेकिन मेरे भैया को इस वन में मत रखना। तो वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं कि देखिए कि मैं प्रभु से पूछता हूं, राम जी से पूछता हूं, राम धर्मज्ञ है, राम सदाचारी है, राम नीतिमान है, राम सब गुण संपन्न है, सब गुणों के आगार है। और राम जी को हम अभी सभा में बुलाएंगे तो सभा में वशिष्ठ मुनि, अरुंधति, सभी माताएं, भरत महाराज, शत्रुघ्न, लक्ष्मण आदि सब लोग, मंत्री, सुमंत्रण, सारे लोग वहां पे थे। और उस दौरान चर्चा को प्रारंभ हो गया और सब लोग अपनी धर्म की, शास्त्र की, नीति की, सब एक के ऊपर एक एक के ऊपर चर्चा करने लगे। इतिहास से अनेक उदाहरण दिए कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, पुत्र धर्म श्रेष्ठ है या प्रेम धर्म श्रेष्ठ है, नीति धर्म श्रेष्ठ है, इसकी चर्चा होने लगी। तो वशिष्ठ महाराज बोलते हैं कि मेरी मनस्थिति इतनी द्विधा में आ गई कि सारे शास्त्रों को निचोड़ करने के बाद मुझे उसका सार समझ में आया। मैंने कहा कि इसका आंसर तो केवल, इसका उत्तर तो केवल प्रभु राम ही दे सकते हैं। राम के पास उनका टर्न आ गया तो राम जी ने कहा कि गुरुवर्य, मैं आपके विचार से सहमत हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अयोध्या वापस लौटूं और मेरा राजतिलक हो, अयोध्या की प्रजाजन अनाथ हो गई है, अयोध्या को संभालना है, तो मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पिता का वचन को मैंने तोड़ दिया तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए मुझे एक तरफ लगता है कि पुत्र का धर्म जो है पिता की आज्ञा का पालन करना, यह सब सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर भरत चाहता है कि मुझे अयोध्या वापस जाना चाहिए तो मैं भरत जी के लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भरत आपकी क्या इच्छा है। तो उसके उपरांत इस प्रसंग को बहुत अच्छा तुलसीदास जी कहते हैं, वो कहते हैं, वेद शास्त्र पुराण इसमें प्रसिद्ध है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है और स्वामी धर्म और सेवा धर्म इसमें बहुत ही विरोध है। दोनों एक साथ को पालन करना यह बहुत कठिन है। प्रेम के लिए कोई सीमा नहीं होती, प्रेम के लिए कोई ज्ञान नहीं होता, और जो वैर है वो अंधा होता है। इसलिए भरत महाराज जी कहते हैं कि अगर मैं कुछ स्वार्थ के भांति मैंने कुछ बोल दिया या प्रेम से मैंने कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। मैं चाहता हूं जैसे राम की इच्छा हो, जैसे गुरुवर की इच्छा हो, वही मेरे लिए उचित हो। तो देखिए, तय करके आए थे कि राम को राज्याभिषेक करना है और उनकी इच्छा को पूरी करना है, लेकिन मन में सोचने लगे स्वामी धर्म और स्वार्थ। अगर स्वामी धर्म के बीच में स्वार्थ आता है, स्वामी का तो बोल रहे कि ये मेरे स्वामी है, उनका सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन स्वामी धर्म के बीच में स्वार्थ की मेरी इच्छा, स्वामी को मेरी इच्छा को मानना पड़ेगा। इसलिए दो प्रकार के शिष्य होते हैं। एक शिष्य होता है कि गुरु के आज्ञा को पालन करता है, गुरु जो कहे वो उसका ये है। लेकिन दूसरा शिष्य होता है कि गुरु जी आपको ये करना चाहिए, गुरु जी आपको वो करना चाहिए, गुरु जी आपने ये नहीं किया, गुरु जी आपने वो नहीं किया। तो एक शिष्य होता है गुरु को सिखाने लगता है तो बोलता है कि ये जो स्वार्थ बुद्धि है ये शिष्य ठीक नहीं है, ये स्वामी को हमेशा सिखाने कारण उनको तकलीफ देता है। दास कहते हैं ना, दास और दास, और दास जो है स्वामी के पास जाके उनका खून चूसता है और दास होता है स्वामी का सेवा करता है। इसलिए जो दास से भाव है ये स्वामी धर्म जो है उसमें अगर स्वार्थ की इच्छा होती है तो स्वामी धर्म में बाधा है। इसलिए वो कहते हैं कि हे राम, आप सभी जीवन के सभी लोगों के प्राण हो और मेरे से कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। मैं चाहता हूं कि आपके लिए जो उचित धर्म है उसका पालन मैं करूं। और उसके उपरांत जनक महाराज जी को बुलाते हैं कि जनक महाराज जी और उनके दूत जो चल के मिथिला से आते हैं, तो राम जी उनको प्रणाम करते हैं। जनक महाराज सीता महारानी का देखते हैं, फिर वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करते हैं। आपस में चर्चा होती है कि करे तो क्या करें। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि जनक महाराज, आप इतने ज्ञानी हो, आप इतने शास्त्र पढ़े हो, प्रश्न का उत्तर नहीं है। भरत महाराज और राम जी के बीच में जो ये है उसका डिसीजन कुछ नहीं है। तो जनक महाराज जी कहते हैं कि सारे शास्त्रों का विचार करके, सब कथाओं को कह के, वो कहते हैं कि मुझे तो एक ही दिखाई देता है कि अगर भरत महाराज वो खुद होके कहते हैं कि राम जी की इच्छा के अनुसार मुझे चलना है, तो उनका धर्म श्रेष्ठ है। ये सेवक का धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। और ये भरत की भक्ति जो है वो चिरकाल तक ये जो भारत भूमि में आबादित रहेगी, भरत का नाम ऊंचा रहेगा। इसलिए भरत की इच्छा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जनक महाराज उसको अनुमति देते हैं और कहते हैं कि, फिर भरत महाराज कहते हैं कि आपको अगर इच्छा है तो राम जी को कहते हैं कि आप उसके उपरांत भरत को संदेश दीजिए। तो राम जी कहते हैं कि सब शास्त्रों के अनुसार, सब गुरुजनों के अनुसार और मेरे पिता के आज्ञा अनुसार मैं 14 साल के वनवास का वाव लिया हूं, शपथ लिया हूं। तो भरत, अगर आप स्वामी धर्म श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे वनवास करना है और आप अयोध्या जाइए और अयोध्या की सारी प्रजाओं को आपका आश्रय प्रदान कीजिए। आप राज्य को संभालिए, आपका राज तिलक होगा। भरत महाराज जी कहते हैं कि भैया, ये संभव नहीं है। अयोध्या तो मैं वापस लौटूंगा लेकिन राज्याभिषेक तो आपका ही होगा। मैं आपसे एक ही भीख मांगता हूं कि आपके जो चरण कमल पादुका है वो मुझे दीजिए। मैं उसको राजगद्दी पे लेके उनकी पूजा करके मैं राज को संभालना चाहता हूं। तो उसके उपरांत भगवान राम जी सोचते हैं कि अयोध्या को संभालना है लेकिन गुरुजी सामने है, वशिष्ठ मुनि है, अरुंधति है, मंत्री लोग हैं। तो मन में प्रश्न आता है कि गुरुजी के सामने मेरे चरण कमल मेरे भाई को कैसे दें। लेकिन गुरुजी की आज्ञा होती है कि राम, ये चरण पादुका को भरत के पास पहुंचा दो। तो उस तरह से भरत महाराज को चरण पादुका जब मिलते हैं तो चरण पादुका अपने सर पर लेते हैं और उस दिन से वो वाव लेते हैं कि बोलते हैं राम जी को कि 14 साल के बाद एक भी दिन अगर आप लेट आ गए तो मैं अपने प्राण को रख नहीं पाऊंगा और 14 साल तक मैं कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा, मैं कोई बिस्तर पे सोऊंगा नहीं, और जो आप भोजन कर रहे हैं फल और कंदमूल, मैं जो जौ है